सभी बहनों को अच्छी तरह नींद आई? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि यहां नींद नहीं करना। अब आज का विषय बहुत ही रोचक है और बहुत ही गुणकारी है, और वह विषय अच्छा है क्योंकि सबकी विशेषताओं से संबंधित है। आज का विषय तो आपको पता ही है ना? क्या नहीं पता? भगवान की यूनिवर्सिटी के कई वंडर हैं कि ये भी वंडर है कि हमें टॉपिक ही नहीं पता। हाँ चलो, मुझे भी नहीं पता, फिर तो अच्छी बात है। विषय ये है कि अपनी विशेषताओं का प्रयोग कैसे किया जाए, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो बहनों के क्वेश्चन है, प्रश्न है इस विषय से संबंधित, वो मुझे लिस्ट दी गई थी, उसमें से भी आप उसको जोड़ लेना। तो बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि ऐसा कोई ब्राह्मण आत्मा पैदा नहीं हुए, वो ब्राह्मण बनते ही नहीं है, जिसमें कोई खास विशेषता ना हो। तो साथ साथ ये भी कहा हुआ है कि यूं तो हर एक ब्राह्मण में विशेषताएं हैं और एक खास विशेषता भी है, और ये भी कहा हुआ है कि जब तक ब्राह्मण है, जीवन है, तब तक थोड़ी थोड़ी कमजोरियां भी और एक खास कमजोरी भी है हर एक में। तो हमें अपनी खास विशेषता और खास कमजोरी हर एक को पता होती है। तो कमजोरियों का वर्णन तो आज करना नहीं क्योंकि हमारा टॉपिक ही नहीं है, तो विशेषताओं का वर्णन करना है। तो हर एक को अपनी विशेषता, खास विशेषता दूसरे भी बताते रहते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि इसमें ये तो है लेकिन, है ना, तो ये तो जो है वो विशेषता है। अब जैसे किसी को ज्ञान की बहुत विशेषता है, ज्ञान की सब पॉइंट्स बुद्धि में रहती हैं अनेका अनेक, किसी को योग की बहुत विशेषता है, हर वक्त शांत गंभीर बाबा की याद में सब बात कर रहे होंगे, वो योग लगा रहे होंगे, अच्छा उनका प्रभाव पड़ता है। आजकल हमने गुलजार दादी को देखा है कि वो, हम लोग मीटिंग भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो खास हमने नोट किया है कि वो बहुत योग में रहती हैं, और उस योग बल से ही आप देखेंगे वो एवर हेल्दी बन गई हैं। जानकी दादी भी ऐसे ही करती है। तो कोई योग का हमारा विषय सूक्ष्म तो है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है दैवी गुण। तो आप देखेंगे कईयों को देखते ही कहते हैं कि इसमें मैनर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अज्ञानियों में भी दैवी गुण होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो चौथा विषय हमारा सेवा है। तो सेवा भी कईयों को थक, हर वक्त सेवा के लिए तैयार रहते हैं। कई कहते हैं कि भाई दोपहर का वक्त, रेस्ट का स्टूडेंट, ग्राहक आ गया इस वक्त, दुकान बंद होने वाली थी। तो इसलिए ये हर एक की विशेषता, यानी विशेषताओं को भी हम अपने चार सब्जेक्ट में बांट सकते हैं, और चार सब्जेक्ट में ही हमारी अगर विशेषता हो जाए तो फिर क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। और बाबा ने कहा ही है कि ये जो खुशी कभी ज्यादा कभी कम होती है, इसका कारण भी क्या है, बैलेंस कभी ज्यादा कभी कम होता है। क्योंकि मान लीजिए हम ज्ञान में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन उसके कारण से योग पीछे रह जाता है, तो क्या होगा, दिल के अंदर तो आएगा ना, बैलेंस नहीं है, पहिए चार हैं गाड़ी के, एक में हवा कम है, तो काम बिगड़ेगा। इसी प्रकार से कोई योग में बैठे रहें और कहें कि भाई हमारे पास सेवा तो है ही नहीं, या सेवा कम की, उसको भी फील होगा। इसलिए अगर चारों सब्जेक्ट बराबर बराबर होंगे तो हमारी विशेषताएं ज्यादा काम में आ सकती हैं। इसलिए हर एक को अपनी विशेषता तो पता ही है, लेकिन विशेषताओं को प्रयोग में लाने के लिए ये आवश्यक है कि हम एक की कॉस्ट पर दूसरा काम न करें। ऐसा न करें कि एक काम में ज्यादा ध्यान दे दें तो दूसरा कम। जैसे स्टूडेंट कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो भी देखो कई बहनों की ये विशेषता अभी से आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया है कि क्या पॉइंट चल रही है। हाँ अच्छा, यहां से कम एंड तक तो दिखाई देता ही है। हमने ऑपरेशन भी कराया हुआ आंख का, इसलिए जरा ध्यान रखना। तो कहने का भाव ये है, ये जो विशेषता है इसको काम में लाने के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक काम में लगे तो दूसरा पीछे रह जाए, और ये भी नहीं करना चाहिए जब जो काम कर रहे हैं उस समय दूसरे का ध्यान आए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो योग में बैठे हैं तो क्या ख्याल आ रहा है, टाइम योग का है, ख्याल क्या आ रहा है कि मुरली में ये आया था शंकराचार्य को ये पॉइंट सुनाओ है। अभी ना तो शंकराचार्य हमारे सामने है ना अभी वो आने वाला है, उसका कोई तो हम ये सोच रहे हैं, या और भी कोई ये पॉइंट मुरली में आई थी तो योग में ये आ रहा है, और जब मुरली सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाबा कहता सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट योग है, योग में हो जाओ। अच्छा, तो जो ऐसा करेंगे उसको मन के ऊपर काबू रहेगा। तो मन के ऊपर काबू रखने का ये भी तरीका है, इंग्लिश में भी कहते हैं वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, कि जब जिस काम को करना है उसमें अटेंशन होना चाहिए। सोने के वक्त सोना, जागने के वक्त जागना। कोई जागने के वक्त सो जाए तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने, सेठ ने अपनी फैक्ट्री के लिए एक चौकीदार रखा, और चौकीदार को सपना आया कि आज डाकू आने वाले 11 बजे। उसने सेठ को बता दिया डाकू आने वाले 11 बजे। सचमुच डाकू आ गए, उसने प्रबंध कर लिया था, बच गया। उसने चौकीदार को 10,000 रुपया इनाम दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से क्यों निकाला, हाँ क्यों, वो सो गया था, सपना तो तभी आया ना, चौकीदार का काम सोना थोड़ी है। इसी वास्ते हमें भी अपने काम का ध्यान रखना चाहिए। तो अज्ञानी लोगों का ऐसा होता है, जो योगी नहीं है भोगी हैं, उनका क्या होता है कि जब सोने का टाइम है उनको नींद नहीं आएगी, जब जागने का टाइम है उसकी आंख नहीं खुलेगी, जब किसी और चीज का टाइम होगा वो और चीज करेंगे, उनके ख्यालात बिखरे रहते हैं। इस वास्ते अपनी क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं योग से आपकी कंसेंट्रेशन पावर बढ़ती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, और एकाग्रता की शक्ति के लिए हमें योग में तो बैठना ही है लेकिन सारा दिन भी ध्यान रखना है। एकाग्रता की शक्ति हमारी कायम रहे, क्योंकि एकाग्रता की ही शक्ति है, वही एकाग्रता अगर बिखर जाए तो क्या होगा। जैसे हम कहते हैं संगठन की शक्ति है, यूनिटी की पावर है, 5 उंगलियों से लड्डू बनता है। कई बहने मिसाल देते ना, लड्डू बनाना हो तो 5 उंगलियों से बनता है। अगर ये कहे मैं बड़ी, ये कहे मैं बड़ा है, ये कहे मैं बड़ी, ये कहे मैं बड़ी, तो एक तो कुछ नहीं बना सकती। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी पहला शुरुआत तो एट होम होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमारे अंदर भी जो शक्तियां हैं अगर वो इकट्ठी नहीं होंगी, जिसको इकट्ठे होने से एकाग्रता है, वैसे हम कहते हैं शांति की शक्ति, लेकिन शांति में अगर सुख नहीं है, शांति में अगर प्रेम नहीं है, शांति में अगर उमंग नहीं है, शांति में अगर भविष्य की खुशी नहीं है, शांति ऐसे ही है मुर्दा घाट की शांति, तो कोई शक्ति थोड़ी होगी, वो तो उदास कर देगी। इस वास्ते ये एकाग्रता का अर्थ है कि मेरी खास विशेषता उसके साथ मेरी आम विशेषताएं भी साथ रहें, तब मेरी विशेषता काम में आ सकती है। मान लो कोई डॉक्टर है, अब उसकी नॉर्मल ड्यूटी बाहर से तो डॉक्टर की है, लेकिन वो बीके डॉक्टर है तो उसका क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर उसकी विशेषता है, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ उसकी क्लास ठीक चलती है, उसकी पढ़ाई ठीक चलती है, उसका योग ठीक चलता है। ऐसा तो नहीं कि सब लोगों को भट्टी में भेजा जा रहा है, वो कहे मेरे तो मरीज आ जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। वैसे तो कहते हैं कि जिस दिन डॉक्टर काम नहीं करते उस दिन कम लोग मरते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर ध्यान रखते हैं तो ज्यादा लोग मर जाते हैं। डॉक्टर हड़ताल पर हो जाए तो, जैसे सतयुग में डॉक्टर होते ही नहीं तो क्या होता है, सबकी आयु लंबी हो जाती है। लेकिन जो भी ड्यूटी मिली है, कहने का भाव ये कि इस ड्यूटी को करते हुए हमारा व्यवहार कैसा है, व्यवहार के अंदर भी व्यवहार होता है। एक है, सब एक है, सब आत्मा है, सब इंसान है। मैं तो डॉक्टर हूं, दादी प्रकाशमणि जी आ जाए या कोई पहरेदार आ जाए, मुझे तो जो पहले आएगा उसको ही देखना है, ये लॉफुल हो गए, है ना। तो उसमें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसी को कैसी दवाई देनी है। बाबा भी कहते थे कि ये देखो फौजी होते हैं, फौज में भी सब खाकी ड्रेस वाले होते हैं, सबको बूट होते हैं, लेकिन ऑफिसर को अलग होता है, ऑर्डिनरी को अलग होता है। कोई रीस करके कहता है, ऑफिसर्स का मेस भी अलग होता है, कोई रीस करके कहता है हम तो सब बाबा के बच्चे, इसको ऐसा क्यों, मुझे क्यों। कईयों के आज प्रश्न भी आए हैं, हमारी सेहत का ध्यान नहीं रखते, हमारी दवाई ठीक नहीं होती, हमारा कोई अटेंशन नहीं करता। तो बात यह है कि लोग हमारी अटेंशन करें, हम इतने अट्रैक्टिव हों कि खुद आके कहें आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, या हम पढ़े हैं और कहें कोई हमसे आके पूछे तकलीफ तो नहीं है। हम अपने आप को वैल्यूएबल बनाए ना। जैसे कल एक बहन कह रही थी कि चाय देना या सेवा करना, मान लो आपको कोई कहे दादी प्रकाशमणि जी की चाय बनाने की आपकी ड्यूटी है, तो आप खुश होंगे या कहेंगे कि क्या बर्डन आ गया, क्या करेंगे, खुश होंगे। बाबा का भोग बनाने की आपकी ड्यूटी है तो क्या करेंगे, खुश होंगे। अगर आप ये समझे कि बाबा का ही भोग या बाबा ने ही अपनी जगह इसको निमित्त बनाया हुआ है, हम इसकी सेवा नहीं कर रहे बाबा की कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई हल्का काम है, निमित्त कोई भी हो। हमने कल भी कहा था कि लोग तो पत्थरों को भोग लगाते हैं जाके मंदिरों में जाकर के, हैं उसके पानी से नहा के उसका पानी पीते हैं, चरणामृत पीते हैं, भक्ति में करते हैं। इस वास्ते हमारे दृष्टिकोण को बदलना है। आज भी हमने जो प्रश्न पढ़े हैं उनका कंसर्न भी विशेषताओं से है कुछ नहीं। हमने देखा सारी बहनों की बुद्धि बहुत तेज है, क्योंकि रोज क्लास कराते हैं, अपनी सेवा करते हैं, अनुभव करते हैं, सेंटरों में रहते हैं, तो सबके अंदर सब बातें क्लियर है। ये हमने सारे प्रश्न पढ़ के देखा। खाली उसमें ऐड क्या करना है, ऐड सिर्फ ये करना है थोड़ा अनुभव, और अनुभव ऐड करने के लिए आपको अनुभवियों को देखना चाहिए। सीधी बात है कि शुरू में भी बहुत सारे बाबा के बच्चे यज्ञ में आए थे, अच्छा वो सारे के सारे आज हैं, अच्छा सारे में से भी जितने हैं वो नंबर वाइज हैं या एक जैसे हैं, नंबर वाइज हैं। तो अगर आप देखें उसमें से किसको आप कॉपी करेंगे, ऊपर वाले को करेंगे ना। इसी प्रकार से जैसे कोई हॉस्पिटल में जाके ये नहीं कहता, मान लो किसी को कैंसर हो जाए और कोई कहे कैंसर का टाटा हॉस्पिटल सबसे अच्छा है, वो टाटा हॉस्पिटल में जाएगा खुशी से कहेगा मुझे मेरा को एडमिट कर लो, या ये कहेगा टाटा हॉस्पिटल वालों आपने कितने लोग आपके यहाँ कैंसर से शरीर छोड़ गए, ये कहेगा पहले ये बताओ तब मैं दाखिल होऊंगा। ऐसे तो कोई हॉस्पिटल मिलेगा ही नहीं जिसमें कोई शरीर ना छोड़ गया हो। इस वास्ते बाबा कहता है कि हमें ये जो जितने प्रश्न है उसके 80% इसलिए हैं कि हम रॉन्ग एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं। बाबा ने कहा हुआ या तो बाबा को देखो, या जो सफल हैं उसको देखो, या जो अपने साथ वाले उसकी भी गुण देखो, विशेषता देखो। तो अगर हमने अपनी विशेषता को अमल में लाना है तो हमें दूसरों की भी विशेषता देखने की आदत डालनी चाहिए, और अगर हमने दूसरों की विशेषता की जगह कमियां देखी तो हमारे अमल में भी क्या आएगा, अपनी कमियां भी अमल में आ जाएंगी, वो मदद करेंगी, उसमें भी तो कमी है, मेरी क्या है, उसकी भेंट में मेरी तो कुछ भी नहीं है। इस वास्ते जिस चीज का कोई कस्टमर होता है, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो छोटा काम आपको इग्नोर करना पड़ेगा। किसी ने बहुत बड़ा काम करना है तो छोटी छोटी बातों में पड़ जाए। अभी भी बाबा ने मुरली में कहा है कि 60 साल वाला व्यक्ति अगर बच्चों की गेंद से खेलना शुरू कर दे तो क्या कहेंगे, तोतली भाषा में बोलना शुरू कर दे, हाथ और चार पैर पे घिसर के चलना शुरू कर दे, उसको क्या कहेंगे, हैं कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना। जो और छोटा बच्चा बुजुर्गों वाली बात करनी शुरू कर दे, छोटा बच्चा जाके अपने दादाजी का कोट पहन के और उसकी सोटी लेकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाए, मैं दादाजी हूं तो भी लोग हंसेंगे। इस वास्ते मतलब ये है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही समझना ज्ञान है। ज्ञान सिर्फ मोटा मोटा नहीं है कि मनुष्यात्मा कितनी योनियां लेती है। एक ने यह भी प्रश्न किया कि लोग कहते हैं स्त्री स्त्री बनती है, पुरुष पुरुष ही बनता, उसको क्या समझाएं, है ना। तो ऐसे ऐसे कई प्रश्न हैं ज्ञान के। कहने का भाव ये है कि मोटे रूप में हमारी सारी ही जो बातें हैं वो पांच चार बातों में डिवाइड होती हैं। एक तो मैंने देखा है कुछ ज्ञान की संबंधित प्रश्न है, वो तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत किसी से पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है जो विज्ञान से संबंधित है, कई ऐसी आत्माएं लगती हैं जिनको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से बहुत ऊंचा है। हमने आध्यात्मिक ज्ञान बाबा का दिया हुआ ईश्वरी ज्ञान है, इसको विज्ञान से सिद्ध नहीं करना, बल्कि विज्ञान इससे उत्पन्न हुआ है। जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण से गीता उत्पन्न हुई, ना कि गीता से श्री कृष्ण उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से विज्ञान के भी कई प्रश्न उसमें पूछे हुए हैं कि भाई वो उड़ंत अस्त्री जो है यूएफओ वो क्या है, और लोग कहते हैं दूसरी दुनिया में भी आबादी होगी, वहां भी लोग रहते होंगे, कल भी कोई कह रहे थे पूछल तारे की वजह से तो ये नहीं हो रहा, आदि आदि। तो कहने का भाव ये है कि ये ईश्वरी ज्ञान जो है, इसने बाबा ने पहले ही बता दिया है किसी भी जगह और दुनिया नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, तो वो बात कभी भी कट नहीं सकती। इसलिए हमें ऐसे ऐसे प्रश्न भी हैं। फिर कई प्रश्न ऐसे हैं जो बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान योग इसलिए सिखाया जा रहा है कि अपनी लाइफ को बनाओ। कोई भी बात जो हमारी लाइफ से संबंधित नहीं है, कि जैसे ऐसे भी प्रश्न है पशुओं की आत्माएं कहाँ रहती हैं, ये प्रश्न है। अच्छा, ऐसे ऐसे जो प्रश्न है, ऐसे तो कल कोई पूछेगा कितने प्रकार के सांप हैं धरती पर, कितने हवा में, कितने और सागर में कितने, ये भी ज्ञान है। अच्छा, और इस तरह की बातें करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट से, जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, उससे दूर हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि हमें इसका उत्तर नहीं आता इसलिए हम उत्तर नहीं दे रहे, या शिव बाबा को इसका उत्तर नहीं आता, ऐसी नहीं है। मान लो एक शताब्दी एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस है, वो बहुत जल्दी चलती है, तो छोटे छोटे स्टेशन पे नहीं रुकती, इसीलिए टाइम पे तेज चलती है। कोई कहे इसमें इतनी भी ताकत नहीं कि मेरे गांव में के नहीं रुकती है, कैसी राजधानी एक्सप्रेस है, ऐसा नहीं है, परंतु इसलिए नहीं रुकती कि उसको ज्यादा ताकत है, उसको छोटी बात में नीचे नहीं आना है। इसी प्रकार से हमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन से, कई ऐसे सूक्ष्म भी बातें हैं, ये श्री कृष्ण कैसे होगा, फलाना ये कैसे होगा, ये फलाना, ये जैसे ऊपर बाबा ने हमेशा कह रखा है ज्ञान के जंगल में मत जाओ, और आपको जो मुझे बताना होगा, कई कहते हैं हम अपने स्टूडेंट के लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए नहीं पूछ रहे, हमें तो निश्चय है। अच्छा, स्टूडेंट को भी कह दो ये तो बड़ी पढ़ाई है, हम भी बीए में पढ़ रहे हैं, तुम तो पहली के स्टूडेंट हो या छठी के हो, तुमने अभी से एमए के सवाल पूछने शुरू कर दिए, ये तो बाबा ने अभी तक हमें भी नहीं बताया, तुमको हम कैसे बताएं, स्टडी तो नंबर वार होती है ना, अगर क्लास एक है इसका ये मतलब थोड़ी है कि स्टडी नंबर वार नहीं है, ऐसे करके उसमें जाना ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार से कई प्रश्न लौकिक और अलौकिक से संबंध रखते हैं, तो उसमें ये आता है लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, ईश्वरी जीवन और लौकिक जीवन, तो उसमें भी हमें बहुत मोटे रूप से ये स्पष्ट होना चाहिए कि लौकिक से क्या मिलेगा, अलौकिक से क्या मिलेगा। बाबा जब मुरलियों में कहते हैं कि रावण राज्य में लौकिक आपका कल्याण भी करना चाहेंगे तो उसमें भी अकल्याण हो जाएगा, और केवल बाबा ही कल्याणकारी है, हम इसी ये सोचकर इसमें आए हैं। जब हमने एक बार फैसला कर लिया, अपनी डायरी में लिख लिया, अपने दिल में लिख लिया कि हमारा कल्याण बाबा ही कर सकता है, तो कभी यहां ऊंच नीच देखकर घबरा करके ये सोचना कि हम इससे तो लौकिक अच्छा है, तो ये टेम्परेरी माया धोखा देती है, क्योंकि माया कहाँ आएगी। यही कहते हैं नहीं नहीं है सब ठीक, ज्ञान की बातें ऊंची ऊंची हैं, बहुत गहरी गहरी हैं, जब उसको प्रैक्टिकल करते हैं ना, प्रैक्टिकल में हम ये बातें नहीं देखते हैं, ऐसा कहते हैं। अच्छा, यही बातें हमारी दादियों के आगे नहीं आई होंगी, ब्रह्मा बाबा के आगे नहीं आई होंगी, बाकी भी जो जितने चल रहे उनके आगे नहीं आई होंगी, आई तो जरूर होंगी, लेकिन उन्होंने वो घर चले गए क्या, नहीं। इस वास्ते उन्होंने भी कुछ देखा होगा, प्राप्ति को और क्लियर करके देखा होगा। जैसे कोई चीज बहुत दूर से देखो तो दिखती नहीं, और धुंध हो तो बिल्कुल भी नहीं दिखती, और समीप आए तो दिखता है कि कुछ है, लेकिन ये नहीं दिखता कि पेड़ है या व्यक्ति है, और नजदीक आओ तो व्यक्ति तो दिखता है, ये नहीं दिखता कि पुरुष है या स्त्री है, और नजदीक आओ तो दिखता तो है स्त्री है, ये नहीं पता कि मेरी माँ है या दूसरे किसी की माँ है। तो जितना समीप आते जाएंगे उतना क्लियर दिखेगा। इसी प्रकार से इसमें क्लैरिटी करनी है और कुछ नहीं, जिसको जो अनुभव से आती है तब करके हमको ये सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, माया कहाँ से आएगी। आप सोचो, हम लोगों को बाहर से तो माया आएगी नहीं, जहां रहोगे वहीं से आएगी, तो किससे आएगी? माया तो भूत है, वो कैसे आएगा? जैसे भगवान को भी आने के लिए ब्रह्मा का रथ चाहिए, है ना, कोई शरीर तो चाहिए। गुस्से को भी आने के लिए कोई रथ तो चाहिए, इस माइक्रोफोन में थोड़ी आ जाएगा, तो मेरे में आएगा तो माइक्रोफोन में आएगा। इसी प्रकार से माया भी सूक्ष्म है, उसका कोई शरीर तो है नहीं, तो क्या करेगी? जो आपके साथी हैं उसमें आ जाएगी, जो आपके इंचार्ज हैं उसमें आ जाएगी, जो आपके नीचे वाले उसमें आ जाएगी। आप सोचोगे ये मुझे तंग कर रहा है, मेरी ट्रांसफर कर दो। अच्छा कर दो, वहां भी आ जाएगी। तो आपका शत्रु कौन है, माया या ये व्यक्ति? ये तो निमित्त है। मान लो इस समय मेरे ऊपर ये कोई यहां से पत्थर गिर जाए और मेरी बाजू टूट जाए तो क्या होगा? मैं क्या कहूंगा, पत्थर तूने बाजू तोड़ दिया है, ऐसे हॉल में मुझे भेज दो जहां पत्थर ना गिरे। ऐसा तो नहीं कहूंगा, पत्थर है बेचारा, मेरा कर्म का फल है। अच्छा सड़क पर जाऊं और मान लो एक बैल आए और मेरे को सींग मार दे और वही बाजू उतना ही टूट जाए तो मैं क्या करूंगा? वो पत्थर तो नहीं है, मैं कहूंगा ये बैल हट, फिर मैं कहूंगा ये तो जानवर है, ये तो मेरी भाषा भी नहीं समझता, मेरे कर्म का फल है। अगर मुझे कोई व्यक्ति आके मेरी बाजू तोड़ दे, मान लो कोई बीके आके मेरी बाजू तोड़ दे, फिर मैं क्या कहूंगा, ये कर्म का फल है? मैं कहूंगा अच्छा मैं देखता हूं। तो जब तक तुम्हारे दो बाजू ना तोड़ दू ना, तो मुझे चैन शांति नहीं आएगी। बात क्या हुई, फर्क क्या है? बात तो वही है, कर्म तो वही है, दुख तो वही मिला है, लेकिन मेरी दृष्टि बदल गई। शायद इस व्यक्ति ने मेरा बाजू तोड़ा है, और क्यों तोड़ा है इसने, इसको पता नहीं मैं कौन हूं, या इसको दिखता नहीं। इसलिए अगर हम कर्म की गहराई में जाते हैं तो हमें स्लोगन बहुत अच्छे अच्छे बाबा ने दिए हुए हैं, रोज आप सब स्टूडेंट्स को भी सुनाते हो, तो क्या स्लोगन है कि हम अपना मित्र हैं अपने शत्रु हैं। अपने परिवर्तन से ही हमें सुख मिल सकता है, हमें दुख कोई नहीं देता, या हमारा अभिमान देता है, या हमारे अनुभव की कमी देती है, या हमारा जो चीज है उसको जैसे ना देखना वैसे देता है। जैसे लौकिक में होता है, कोई बड़े घर की कन्या होती है, उसकी शादी छोटे घर में हो जाए तो उसको अभिमान रहता है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है, तो वहां वो एडजस्ट नहीं कर पाती, आखिर वो डाइवोर्स कर देती, घर चली जाती है, उसकी बनती नहीं, क्योंकि समझती है सब छोटे हैं। इसी प्रकार से मेरे में विशेषता, मान लो मुझे इंग्लिश ज्यादा आती है, या मान लो मेरे घर वाले बड़े अमीर हैं, अच्छा वो मुझे पैसा देते हैं, मैं बहुत ज्यादा देते हैं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करने लग जाऊं कि भाई ये तो मैंने इतना पैसा दिया इस यज्ञ के इस सेंटर को, तो आधा तो मैं ही मेरे ही घर वाले चला रहे हैं, तो मेरी शान मान नशा बढ़ जाएगा। मुझे ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरे बाकी साथी जो हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं, शायद उनके माता पिता इतना पैसा नहीं दे सकते हों, शायद वो इतना इंग्लिश विंग्लिश फटाफट नहीं बोलते हों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हो गए। ऐसे होता तो बाबा गरीब नवाज क्यों होता, बाबा के पास बड़े बड़े बिरला टाटा क्यों नहीं आते, वो सब ज्ञान गुल हो जाएगा। और माया दिमाग में बैठकर ऐसी चाबी घुमाएगी कि जिसके अंदर विशेषता है वो भी कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि उसका व्यवहार बदल जाएगा, और जिसमें नहीं है उसको भी कमजोरी हो जाएगी। कहेंगे देखो जी, ऐसे प्रश्न आए हैं, बड़े घर वालों को पूछते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि हमारे वाले भी इतना ही, हम भी उतना ही ला के दें, नहीं देते तो इनसे हमारा व्यवहार बदल गया है, आदि आदि। ये सारी अपनी आंखों का और बुद्धि का फेर है, हमें डांट मारते हैं, लगाते हैं, हमें ऐसे करते हैं। वास्तव में आप कोई झाड़ू देने वाला भी हो, मान लो सिर्फ मैं झाड़ू देने वाला हूं और मेरी ड्यूटी है इस हाल में झाड़ू देना, अगर मैं अपना झाड़ू ठीक तरह देता हूं जो मेरे को ड्यूटी दी गई है, तो चाहे मैं तो झाड़ू देने वाले का ही बच्चा होऊंगा जो झाड़ू दे रहा हूं मिसाल के तौर पर, तो मेरे को कोई डांट क्यों मारेगा कि तुम पैसा क्यों नहीं लाए, तुमने सिल्क का कोट क्यों नहीं पहना, वो ये देखेगा इसने अपना काम ठीक किया। तो हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि में दूसरे की देखकर विशेषता, उसको अपनी कमी गिनकर कि ये मेरे में क्यों नहीं है, अच्छा उसको अपने में लाने की कोशिश करने से हमारे बुद्धि में फेर आ जाता है। मान लो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरे सेंटर में एक बहन रहती है, उसको अंग्रेजी आती है। अच्छा, मेरी ही बुद्धि मुझे कहने लग जाती है, क्योंकि इसको अंग्रेजी आती है ना इसलिए इसको आगे रखते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी आती है ना इसलिए इसको जिज्ञासु देते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी आती है ना इसको दीदी अपने साथ ले। है मेरी बुद्धि का फेर। अगर ऐसा ही होता तो आज जानकी दादी सारे विदेश के सेंटरों की इंचार्ज कैसे होती? उसको तो अंग्रेजी नहीं आती, आती है। इसी प्रकार से ये अपनी बुद्धि हमें दूर कर देती है। अच्छा, बाबा के यज्ञ में सारे अंग्रेजी जानने वाले ही होते तो बाबा इंग्लिश की यूनिवर्सिटी खोल देता है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए मेरा स्वमान जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, उसमें मैं अपनी विशेषता को खोकर जो मेरी है दूसरे की कॉपी करने की कोशिश करूं। कहते हैं ना, कौआ जो था हंस की चाल चला तो क्या हुआ, अपनी भी भूल गया। हम कौए तो नहीं है, लेकिन हम दूसरे की जब कॉपी करते हैं तब हमें इस प्रकार की डिफिकल्टी आती है। अपनी विशेषता पीछे रख लेते हैं, दूसरे की अलग है वो हमारे में होती नहीं, हम सोचते हैं शायद वो हमारे में होगी तब हमारी वैल्यू होगी, तो हमारी अपनी विशेषता काम में नहीं आती, इस कारण से ये प्रॉब्लम होता है। तो मैंने आपको शुरू में भी कहा, वास्तव में केवल मात्र अनुभव और बुद्धि का बदलना। तो माया क्या करती है, चूहे की तरह बुद्धि में घुसकर कहती है ये जो हम कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है, अच्छा इसने मेरी नहीं सुनी, बड़े ने मेरी नहीं सुनी, उसमें क्या होता है? मान लो किसी के दो बच्चे हैं, अब दो बच्चे हैं, दोनों में एक गलती कर देता, उसके तो दोनों बच्चे हैं, तो जो गलती नहीं करता वो उसके पास जाता है, देखो जी इसने गलती की। अब उसको पता भी लग गया इसने गलती की है, लेकिन अब वो क्या करे, वो सोचे कि अच्छा इसको समझा देते हैं। अगर बिल्कुल समझने लायक ही नहीं है, समझाने से भी बिगड़ जाते हैं, कि ऐसे नाजुक भी होते हैं। बाबा भी कहते थे कि बहुत फटा हुआ जो कपड़ा होता है, इसमें बहुत छेद हो, खस्ता हो, उसको अगर आप डंडे से पीटेंगे साफ करने के लिए तो क्या होगा, और फट जाएगा। उसको तो खाली मात्र ऐसे ऐसे थोड़ा सा करके उसका मैल निकालना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसी आत्मा गलती करी जो नाजुक भी है आपके सेंटर में और किसी बड़े घर की भी है लौकिक रीति से, और उसको टीचर ये देखकर, बड़ी बहन, कि चलो इसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको ज्यादा करेंगे तो फट जाएगा, और भी जो थोड़ा बहुत है उससे भी जाएगी, अच्छा उसके जाएगी तो उसके 10 और जो कनेक्टेड है वो भी डिस्टर्ब होंगे, अब इसको वापस भेजेंगे तो अच्छा नहीं लगता, वो सारा सोचकर उसकी गलती को देखते हुए भी उसको मौके पर इशारा देना है या नहीं भी देना है ये डिसाइड करती है। तो अब जिसने उसकी बात पॉइंट आउट की उसको क्या लगेगा, हाँ उसको क्या लगेगा, जो बहन उबासी ले रही वो बताए उसको क्या लगेगा, हाँ क्या लगेगा। मैंने समझा उत्तर देने के लिए मुंह खोला है, लेकिन वो और बात, उसको क्या लगेगा, क्या लगेगा, उसको लगेगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, ये तो भगवान का घर है, यहां भी यहां तो सत्य होना चाहिए, तो यहां तो सत्य नहीं चलता, यहां तो न्याय नहीं चलता, जो गलती कर रहा है उसको भी कुछ नहीं कहा जा रहा, इससे तो डिसिप्लिन बिगड़ रहा है, इससे तो 60 साल में के बाद हमारी उन्नति की बजाय गिरती कला आ गई। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आए हैं कि हम तो देख रहे हैं कि गिरती कला शुरू हो गई है, जैसे शंकर पार्टी वाले कहते हैं। अच्छा, हम शंकर पार्टी वाले हैं क्या, लेकिन बुद्धि में प्रभाव आ गया कि ये गिरती कला आ गई है। अच्छा, अब आप सोचो कि माता पिता एक बच्चे को अपने को फांसी तो नहीं दे सकते, उसका नुकसान तो नहीं कर सकते। लौकिक माता पिता भी, कोई लंगड़ा काना बच्चा भी होगा, दुखी होगा, उसको कहेंगे इसको ऐसे ही चलाओ, उसका ध्यान भी रखेंगे। कोई कहे बीमार बच्चा है, इसको तो रोज फल और दूध आता है, और मैं हूं मुझे चने चबाने को दिए जा रहे हैं क्योंकि मैं हेल्दी हूं, तो इसका मतलब मैं बीमार हो जाऊं ताकि मुझे फल और दूध मिले, आप सोचना चाहिए। इस वास्ते अगर आपको कोई कम अटेंशन देता है आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि अटेंशन लेना मैंने फीस देना, यहां आपसे पैसा तो नहीं लिया जाता, शिव बाबा के अकाउंट में आपका डेबिट हो जाएगा, इसने इतनी अटेंशन ली, वो अटेंशन किसी और को दी जा सकती थी लेकिन इसने ली। इस वास्ते इसमें इंडिपेंडेंट होना, और बड़ी बात यह है, बाबा ने कहा हुआ है जो सो उन्नति का ध्यान सदा रखेगा, वो त्रेता में आएगा। स्व कल्याण का, जो विश्व कल्याण का ध्यान रखेगा वो सतयुग में आएगा। अब आप सोच लो, आपका फर्ज क्या है एज ए टीचर, आपकी क्या ड्यूटी है, स्व कल्याण का ध्यान रखना या विश्व कल्याण का? विश्व का। अगर आप विश्व कल्याण का ध्यान रखेंगे तो स्व कल्याण का ध्यान आप ही हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ स्व कल्याण का ही करते रहे अंत तक, कि भाई एक ने यह भी लिखा है, जब अवस्था डाउन हो तो सेवा करनी चाहिए, ऐसी सेवा का क्या फायदा होगा। जब मूड ऑफ हो तो किसी को समझाना चाहिए, हम क्या समझाएंगे। तो वास्तव में विश्व कल्याण करने से मूड ऑन होगा। अगर मूड ऑफ है, और मूड ऑफ के लिए क्या होता है कि पहले तो एकांत मांगते हैं, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, जैसे किसी को बुखार हो जाए उसका मुंह कड़वा हो जाता है, उसको चीज अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है, बुखार ठीक करो या सेवा ही हटा दो। इस वास्ते हमें विश्व कल्याणकारी में लगने में, और विश्व कल्याण हो नहीं सकता, सेवा का कोई ये मतलब नहीं कि चौथा सब्जेक्ट ही है, उसके लिए तीन सब्जेक्ट और चाहिए। एक दुकानदार का माल बिकेगा तो और लाएगा ना, अगर पहला ही पड़ा है, अगर आपके पेट में पहले ही भोजन पड़ा है खूब अच्छी तरह से, कोई आपको हलवा भी ला के गए तो आप क्या कहेंगे, भूख नहीं है। जब खाली होगा तो हर चीज अच्छी लगेगी, दाल भी अच्छी लगेगी। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि देते जाओ और आपको लेने की इच्छा होगी। अगर देंगे नहीं तो क्या होगा, कहेंगे वही मुरली है, वही पॉइंट है, पिछला ही पड़ा है, वही डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आगे क्या करेंगे। इस वास्ते हमें सार इसका यह है, हमें बार बार इसको बाबा कहता है अपने आप को रिमाइंड करना, अपने आप को स्मृति में रखना, अपनी पोजीशन को देखना, तब आपको इन छोटी छोटी बातों का सलूशन है आपके पास। मैंने प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हुए प्रश्नों को देखा है, सबके प्रश्न में ही उत्तर समाया देखा है मैंने, उसमें है। लेकिन केवल मात्र क्या है, टेम्परेरीली जैसे कोई बादल आ जाता है किसी चीज पर तो बुद्धि में आने, कभी कोई सहेली भी कह देती है, अरे भाई यहां तो ऐसा ही है, उसने ठप्पा लगा दिया, थोड़ा सा मैं सोच रहा था ऐसा है, उसने कह दिया तो जरूर ऐसा ही है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, वो नहीं देखना, क्योंकि वो नजदीक में है ना, उसका अच्छा लगती बात, इसलिए ऐसा ही है। दो तीन ने कह दिया ऐसा ही है तो कहा सब ऐसा ही है। वो आपने राजा की कहानी सुनी होगी, अब मैं ज्यादा कहानियां नहीं सुनाता आपको, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। और कोई कहे मैं घर जाके, कई अपने माँ बाप को सुना देते हैं, कई अपने सखियों को सुना देते हैं, यहां तो ऐसा है, फंस गए, 25 साल हो गए हमें, वैसे के वैसे हैं, ना ऊपर जाते हैं ना नीचे आते हैं, वैसे ही खड़े हैं। त्रिशंकु था ना जो कहते हैं, बीच में लटक गया था, तो हम बीच में लटके हुए हैं, क्या करें। अच्छा, अब बाबा कहता है कि भाई फिर भी लटके तो हुए हो, नीचे तो नहीं आ गए, इतना भी अच्छा सौभाग्य है आपका, ऊपर जाने का मार्जिन तो है, अगर बिल्कुल ही नीचे आ गए फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए है कुछ भी नहीं, जैसे कभी आपने नदी में देखा होगा कोई भंवर में फंस जाए, उसमें कोई रुमाल फंस जाए या कागज, तो वहीं घूमता रहता, तो भंवर में फंसे हुए हैं। तब बुद्धि को भी चलाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि को चलाते रहोगे तो भंवर पक्का होता रहेगा। तब करके एक मुरली में बाबा ने यह भी कहा था कि अपनी कमियों की माला मत सिमरो। अगर आपने अपनी विशेषताओं को काम में लाना है, आपको पता है कमियां हैं, तो विशेषताओं की माला तो सिमरनी नहीं, और कमियों की माला सिमरनी है, यहां तक मन में सिमरनी है, दिन सिमरनी है, रात सिमरनी है, हफ्ता भर सिमरनी है, साल भर सिमरनी है, 25 साल वही माला सिमरनी है, और बाबा के आगे जाके सामने भी बैठ जाएंगे तो भी वही माला सिमरनी है। बाबा में मेरे में ये है, मेरे में पिछली बार कहा था निकल जाए, निकला नहीं है, मेरे साथी बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट, उसके सामने कुछ नहीं बोलना, आंखों आंखों में ही बात करना, हम आपसे वायदा कर रहे हैं अगली बार ये नहीं होगा, लेकिन इतने में टाइम पूरा हो, कहेंगे अगला ग्रुप आओ, तो हो गई मुलाकात। बस मुलाकात में क्या किया जी, माला फेर के आ गए, वो तो भगत भी फेरते हैं, मेरे में ये है, मैंने ये कहा था, हुआ नहीं, अच्छा अगली बारी होगा, अच्छा करके आ जाओ, ये यही मुलाकात है। अच्छा, बाबा आपकी विशेषताएं देख रहे हैं, बाबा मुस्कुरा रहे हैं कि देखो मेरी बच्ची है दुनिया का त्याग करके आई, और इतने को साथ लाई है, फिर भी ये सारे जो 10,000 इकट्ठे हुए हैं इन्होंने ही तो लाए हैं। बाबा वो कह रहा है, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں میرے میں یہ کمی میرے میں یہ کمی. اس واسطے مالا پھیرنا کس کا کام ہے؟ بھگت کا نا. اور جو 25 سال مالا پھیرتا رہے وہ تو بہت بڑا بھگت ہو گیا, اس کا تو نام کسی شرومنی بھگت میں آنا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاستروں کا گیان بھکتی ہے, حالانکہ شاستروں میں گیان لکھا ہوا ہے سنسکرت میں, لیکن وہ بھکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پھیرتے رہتے ہیں بار بار, وہی رامائن بار بار پڑھیں گے, وہی گیتا اینڈ ہوگی پھر شروع کر دیں گے, اسی طرح سے وہ بھی مالا ہی ہو جاتی ہے, نیا تو ہوتا ہی نہیں. اس واسطے اس کو کہا جاتا ہے بھکتی ریپیٹ کرتے رہنا. اب مان لو کوئی اسٹوڈینٹ 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے, اس کا ریزلٹ نکلا, گھر آیا اسکول سے, ماتا پتا نے پوچھا بھائی کیا حال ہے, کیسا ریزلٹ رہا, تو کیا کہے؟ آپ بڑی خوشی کی بات ہے, آپ کو اس سال نئی کتابیں نہیں لینی پڑیں گی میرے لیے. تو کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ بڑا اچھا ریزلٹ ہے, خرچہ بچ گیا. اسی واسطے ہمیں تو بابا تو کہتے ہیں, برہما بابا کو تو نوینتا پسند تھی, پرانی بات کرنا, میں نے پاسٹ کی بات کرنا. آپ کو کوئی کہے کل والی دال کھا لو, آپ کہیں گے میں نہیں کھاتی, بنا دال کے کھا لوں گی, کل والی کیوں؟ اور کوئی کہے پرسوں والی کھا لو. کسی کسی سینٹر میں ہم جاتے ہیں تو بہنیں کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کھانا, بعد میں کہتی ہیں پرسوں کی ہے, اچھا ریفریش کی ہوئی ہے. اچھا اب آپ بتاؤ کہ تو اگر آپ پرسوں کی بھوجن نہیں کر سکتے اور آپ کہیں کہ جی ابھی اتنے سال ہو گئے میرا یہ تو فریش مال نہیں کھا رہے, کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ ہاجمہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے قصور کس کا, ہاجمے کا یا میرا؟ اب بابا کہتے ہیں مرلی کے اندر میٹھے میٹھے بچے, اور مجھے ہے ڈائبٹیز, مجھے تو میٹھا کھانا ہی نہیں. اچھا تو پھر کیا ہوگا, مجھے میٹھے میٹھے کہے گا بھی تو میں کہوں گا نہیں, بوائلڈ ویجیٹیبل, پھیکی پھیکی چیز لاؤ, ہے نا. اچھا تو میرے کو شوگر کھانے کا ہاجمہ ہی نہیں. بابا کہے گا میں تمہیں ماجون کھلا رہا ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے مکھن گھی کو ہاتھ نہیں لگانا, تو ماجون کیسے کھاؤں گا میں گیان کا. اس واسطے ہمارا ہاجمہ تو وشیشتاؤں کے بارے میں دو ایک باتیں اور بھی ہیں. ایک تو یہ ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ بڑا کون ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, بڑا کون ہے, اس گیان میں بڑا کون ہے, جو آیو میں بڑا ہے وہ بڑا ہے, جو ورشوں میں بڑا ہے وہ بڑا ہے, جو دھارنا میں بڑا, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا ہے, جس کو انگریزی زیادہ آتی وہ بڑا ہے, جس کے بہت زیادہ سینٹر ہیں بھاگتے رہتے ہیں وہ بڑا ہے, یا جس کی پرجا بہت ہے وہ بڑا ہے, یا جس کی دھارنا زیادہ ہے وہ بڑا ہے. گیان ہم کس کے لیے لیتے ہیں؟ دھارنا کے لیے. یوگ کس لیے لگاتے ہیں؟ دھارنا کے لیے. سیوا کس لیے کرتے ہیں؟ دھارنا کے لیے. تو آپ کے مکھ سے نکلنا چاہیے بڑے بڑے ایسے کرتے ہیں. ہم بڑے نہیں ہیں کہ ہو سکتے کہ ہم بڑے نہیں ہیں؟ اپنے پر ہم شنشے کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو بڑی خوشی ہے اگر کوئی بڑا غلطی کرے میں کہوں گا اچھا ہوا اس کا نمبر پیچھے گیا میرا آگے آیا, کیا خوشی کی بات ہے نا. اگر سارے بڑے اچھا ہی کام کرتے رہے تو چھوٹے تو سدا چھوٹے ہی رہیں گے کہ نہیں, تو آپ کو مارجن کیسے ملے گا؟ سیٹیں تو لمیٹڈ ہیں. آپ سوچو کہ اگر بڑے غلطی نہیں کریں گے تو آپ کا نمبر آگے کیسے آئے گا؟ بھاگتے ہیں کہ نہیں لوگ ریس میں, دو چار گھوڑے گر جاتے ہیں, کوئی ادھر ہو جاتا تو باقی بچ جاتے ہیں. اس لیے ایک باری میرے کالج میں سلو سائیکلنگ ریس ہوئی تو میں سب سے پیچھے تھا, میں تھوڑا بہت, میرے آگے بھی پیچھے بھی بہت تھے, آگے بھی بہت تھے, ہوا کیا کہ سارے ہی گر گئے. میں تو تھوڑا سلو نہیں تھا لیکن میرے کو پرائز مل گیا کہ باقی گر گئے ہیں, وہ بہت سلو کرنے لگے وہ گر گئے. اچھا اسی واسطے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی غلطی کرے گا تو, یہ نہیں کہ آپ اس سے غلطی کروا رہے ہیں, وہ ڈرامہ انوسار کر رہے ہیں تو میرا نمبر آگے جاتا ہے. لیکن گیان کا لا کیا ہے کہ اس کی غلطی کو دیکھ کر میں غلطی کروں, اگر میں نے بھی کر دی تو میرا نمبر کہاں جائے گا؟ پیچھے. اچھا اس کی غلطی کو دیکھنا اور اس کو ڈرامہ نہ سمجھنا یہ بھی غلطی ہے. بابا تو کہتے ہیں غلطی کر کے اس کا پشچاتاپ میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ بھی غلطی ہے. غلطی کرو हो गई गलती, एक तो दोबारा वो गलती ना करो। मम्मा कहती थी गलती करो लेकिन सेम गलती दोबारा नहीं करो, ये तो कर सकते हो आप, नई गलती करो। अच्छा, तब तो अनुभव होगा ना। इसलिए आप वैसे तो करो ही ना, सबसे अच्छा है। अगर हो जाए तो ये देखो कि पुरानी गलती तो नहीं कर रही दोबारा, फिर तो अनुभव नहीं लिया ना उससे। इसलिए किसी का अवगुण नहीं देखो, ये हमारा लॉ है। क्या अवगुण देखने से अवस्था ऊपर जाती नीचे? अच्छा, किसी का परचिंतन नहीं करो। मान लो कोई अपने घर गया, कुछ लाया और किसी को दे रहा है, आप देख भी रहे हैं, तो आपने ये देखना शुरू, देख के क्या करना चाहिए, ये देखना शुरू कर दिया कि मैं भी ऐसे लाऊं, मैं कैसे लाऊंगी, ऐसे ऐसे है ना, वे तो परचिंतन हो गया, आपको किसने कहा है। इस वास्ते अपने स्वमान में रहो। फिर जो मेरी विशेषता है ये काम में क्यों नहीं आती, तो आप देखोगे जो गलती कर रहे हैं उनके अंदर भी विशेषता है लेकिन उनकी विशेषता काम में नहीं आती। कोई बहुत अच्छा समझा सकते हैं लेकिन उसमें आलस्य है, अच्छा समझने वाला भी आ गया वो क्या करेंगे। जिस बहन ने यहां पर उबासी ली वो जवाब दो। हाँ, जो समझने वाला है आ गया वो क्या करेंगे, है चलो उसके साथ वाले जवाब दे दो, वो कहेंगे मेरा नाम पर लग जाएगा। अच्छा हाँ बोलो। अगर किसी के अंदर समझाने की विशेषता है, समझने वाला भी आ गया और उसको आलस्य है, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को कहेंगे ना, आपको ही कहेंगे तुम समझा दो जरा इसको। अच्छा, अब उसकी विशेषता काम में आई, उसके ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं आप, तो उससे थोड़ा 19 समझा सकते हैं, आपकी काम में आ गई तो फल किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। इस वास्ते ये भी देखना चाहिए कि दूसरे में विशेषता होते हुए भी उसकी विशेषता काम में क्यों नहीं आ रही, उससे भी अनुभव लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मेरी विशेषता भी काम में ना आए। विशेषता अभिमान को भी पैदा कर सकती है। मान लो किसी के अंदर विशेषता है, विशेषता को यूज करने के लिए भी निमित्त भाव चाहिए कि हम विशेषता करें यूज, भगवान के लिए करें, भगवान ने दी है, चलो मेरे में पहले से ही थी लेकिन भगवान ने उसको काम में लाया, अगर मेरे में ना होती किसी और जगह काम में आ रही होती। इसलिए भगवान बाबा ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया जो मुझे विशेषता को यूज करने का मौका दिया, उसमें थकना नहीं चाहिए, मेरे ऊपर ड्यूटी आ गई। किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है तो उसी को कहेंगे खाना बनाओ, अच्छा वो कहे मैं थोड़ा नमक ज्यादा डाल दूं, दो चार रोटी जला दूं ताकि बार बार मुझे ना कहे, है ना, नहीं तो मेरे को ही खाना बनाने को कहते रहते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसमें क्या किया कि अपनी विशेषता को वो कहेंगे नहीं भाई इसका मूड नहीं है, जानबूझ के ऐसे करे छोड़ो, दूसरे से बना लो, हम घटिया खा लेंगे, तो आपकी विशेषता तो रुक गई ना। तो विशेषता को आजकल के दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत बड़े बड़े एमए बीए बाहर घूमते हैं जिसको नौकरी नहीं मिलती। इसी प्रकार से यज्ञ में एम्प्लॉयमेंट बहुत है, आपको कपड़ा भी धोना आता है तो आपको इतने कपड़े मिल जाएंगे जो आप थक जाओगे, कपड़े नहीं थक खत्म होंगे, है ना। आपको रोटी बनानी आती है तो आपको इतना मिल जाएगा, यहां भी आके आपको कहेंगे जाओ रोटी बनाओ, आपकी एम्प्लॉयमेंट पूरी ओवर एम्प्लॉयमेंट हो सकती। लेकिन अगर तो आप ये समझो, ये भी प्रश्न आया है कि रोटी यज्ञ सेवा करना अच्छी बात है लेकिन क्या सारी उम्र रोटी बनाते रहे, ये भी प्रश्न आया है भाई, कभी कभी चावल बना लिया करो, उसमें क्या है ना। तो आपको किसने कहा कि रोज रोटी बनाओ, है ना। अच्छा, इस वास्ते सवाल ये है कि आपका भाव क्या है, जो विशेषता है किसी की वही काम में आएगी। अगर रोटी, कई ऐसे हैं आप यहां भी देख लो मधुबन में, वो रोटी बनाते थे आज वो भाषण करते हैं, कोई टोली बनाते थे आज वो फॉरेनर को भाषण करते हैं, किचन के इंचार्ज थे वो विदेश घूमे आए हैं, ये तो अपनी सेवा के ऊपर है, आप देख लो कि नहीं। इसलिए अगर आप अपनी बीके की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते जाओगे, निमित मात्र आपको कोई भी काम दे दिया जाए, क्योंकि शुरू में तो यही पता नहीं होता इसकी क्या विशेषता है, लेकिन देखते देखते कि इसकी ये विशेषता उसको यज्ञ काम में लगाएगा। बड़ों को क्या जरूरत है, उनको तो बहुत हैंड चाहिए, हम कहते हैं हैंड की शॉर्टेज है, सेंटरों में शॉर्टेज है और कंपिटेंट हैंड चाहिए, तो क्यों नहीं हमारी विशेषता काम में आती। ये नहीं सोचना चाहिए हम तो पढ़े हैं, और हमारे को कोई पूछता ही नहीं, 15 साल हो गए कोई सेंटर ही नहीं मिला है, क्या करें, ये हमारे विक्रम है, कोई बोझ है, हिसाब किताब है, क्या है? नहीं, बाबा ने कह रखा कि छिपे नहीं रह सकते, जो स्पेशल आत्मा है उसको पकड़कर भी ले जाएंगे, उसकी चमक धमक बढ़ जाएगी, लेकिन हम अपनी विशेषता को यूज ना करने से निराश होकर, कई ऐसे हैं वो कहते हैं मेरे में गुण तो बहुत है, कोई मुझे कहे तो मैं करूं ना, अपने आप शुरू कर दूं, कोई मुझे मेरे को कोई चांस ही नहीं देता, इसने जो गीत गाया इससे अच्छा तो मैं गा सकती हूं, है? मुझे कोई कहता ही नहीं गाओ अच्छा, इसलिए वो चलो नहीं भी कहता, एक बार ही नहीं कहा, दो बार ही नहीं कहा, कहीं ना कहीं वो कान में पहुंच गया कि इसको अच्छा गीत गाना आता तो सब कहेंगे, लेकिन हमें निराश भी नहीं होना चाहिए। और विशेष कई बार ऐसा भी होता है, एक बारी दो बारी किसी ने ना कर दिया, तीसरी बारी कहते मैंने करना ही नहीं, जाओ कभी भी नहीं करना, संगम के अंत तक मुझे कहेंगे ना तब भी मैंने नहीं करना। अब ये क्या है, इस वास्ते मेनली आप देखेंगे कि उड़ने वाली रॉकेट को हमने बांध के रखा हुआ है, पर चिंतन से, अवगुण देखने से, बड़ों में गलती निकालने से, बड़ों को इस तरह के बड़े मानने से कि वो हमें दबा रहे हैं, और ये भूलने से इस यज्ञ को चलाने वाला कौन है, हम तो कठपुतलियां हैं, और कठपुतलियों को कंट्रोल करने वाला ऊपर है, वो कहता है मेरे पास टीवी है और मैं टीवी में आपका ऊपर आज का तो क्या, आपका आगे पीछे का सब भविष्य और भूतकाल ज्योतिषी की तरह सब देखता हूं। एक ये भी प्रश्न आया कि हम ज्योतिषी से पूछें जाके, ऐसा भी कोई प्रश्न आया है, और किसी ने कहा है कि हम जो हैं रिद्धि सिद्धि करवा के हमारे बड़े हमको वो काबू करना चाहते हैं, अब बताओ इस प्रकार की बातें। अरे रिद्धि सिद्धि वाले तो वीक लोगों को असर कर सकते हैं, ज्ञानियों को रिद्धि सिद्धि भूत आदि ये सब क्या है, और ज्योतिषी क्या बताएगा। एक ने ये भी लिखा है कि वास्तु शास्त्र है, इधर को मुंह करो तो ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, कई तरह के लोग अंगूठियां पहनते हैं, इससे ये हो जाएगा इससे ये हो जाएगा, होता है कुछ, दवे गौड़ा ने भी 6 अंगूठियां पहनी हुई थी फिर कहां गई। अच्छा, इस वास्ते कहने का मतलब ये है हम ज्ञान के हैं, हमें लौकिक चीजों की पता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो रेत है, इसमें हम बैठ करके अपनी बुद्धि को लगाएं। कई अखबार में पढ़ते हैं, कल भी हम गए, किसी ने कहा अखबार में आया है कि 2020 में ये पूछल तारा धरती पर आके विनाश कर देगा, वो अखबार की बात सच्ची है। किसी ने ये भी लिखा कि दादी चंद्रमणि को ये क्यों नहीं पता लगा कि मैंने शरीर छोड़ना है, ऐसे ही वो पूछल तारा उसने डेट लिख दी है वो पक्की हो गई और हमें ये नहीं पता कि कब छोड़ना है, वो कच्ची हो गई, तो वो बाबा की पॉइंट भूल गए कि कोई भी ब्राह्मण परिवार में वैसे भी दुनिया में कोई भी परीक्षा बताकर नहीं आती, ब्राह्मण परिवार में तो खासकर नहीं आती, पढ़ाई का टेस्ट क्या है, परीक्षा, परीक्षा में अगर नीचे भी रह गए तो बाबा फिर पढ़ा देगा, लेकिन परीक्षा आपको बताकर आए, जैसे इंस्पेक्टर कह दे कि आज मैंने देखने आना है इसलिए स्कूल को साफ रखना, ये कोई परीक्षा थोड़ी हुई, ये तो करप्शन है। इस वास्ते हम अपने ज्ञान की स्लोगन्स को जो हम लगाते हैं सेंटरों में, ज्ञान की पॉइंट्स को भूलने के कारण और परचिंतन के कारण ऐसे वातावरण के छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं जिससे हमारी विशेषताएं दब जाती हैं और उल्टा ही हमारे अवगुण दिखाई देने लग पड़ते हैं। अब कोई बहुत अच्छी ड्रेस पहने और यहां उसके सब्जी लग जाए तो क्या होगा, हर वक्त ऐसे ही धक्के बैठा रहेगा कि अच्छा भाई क्या बात है, बोलो क्या बात है, तो ये क्या हुआ है, उसको दबाया हुआ है, तो अवगुण जो है भाई आखिर दाग नहीं दिख रहा, ये तो दिख रहा है कि हाथ से दबा रखा है, इस वास्ते वो पता तो लग जाएगा, तब करके वो विशेषता तो कोई ये नहीं देखेगा कि आपकी इतनी अच्छी ड्रेस है कहां से धुलवाई है, वो ये देखेगा ये क्या कर रखा है, क्योंकि नेचुरल है। इस वास्ते विशेषता की विशेषता रह गई, कोई कहे ये मूर्ति बहुत अच्छी इसकी सिर्फ आंख नहीं है बस और सब ठीक है, या क्रॉकरी सेट बहुत अच्छा थोड़ा क्रैक है, अच्छा अगर क्रॉकरी क्रैक नहीं ले सकते अगर हम क्रैक हुए हमें कौन पूछेगा, इस वास्ते थोड़ी सी कहेंगे थोड़ी सी लकीर है बस यहाँ और कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इस वास्ते हमें ये देखना चाहिए हम कंप्लीट हैं, तो फिर कौन हमें नहीं पूछेगा। तो विशेषता में देखिए आपको और भी बात बता दें, विशेषता का प्रयोग बहुत संभल करके करना चाहिए, विशेषता एक बहुत तेज चाकू की तरह है, तभी तो विशेषता, खुंडे चाकू को कोई विशेषता थोड़ी कहेगा, वो तो साधारण है, बहुत तेज चाकू है। और जितना तेज चाकू होता है उसको संभाल के यूज किया जाता है, नहीं तो वो गाजर काटने के साथ साथ उंगली भी काट सकता है। तो विशेषता रूपी चाकू को नम्रता से, निमित भाव से दबाकर, दूसरों को डिस्टर्ब ना करके कि अपनी विशेषता का इतना शो किया जाए जो दूसरे में ईर्ष्या पैदा हो जाए, दूसरे समझे कि, और अपनी वो सारे कुछ थोड़ा बहुत उसके बदले में सम्मान भी मिला, उस सम्मान को देखकर बाकियों को तोड़ फोड़ शुरू कर दे, जैसे किसी क्रॉकरी शॉप में एक बैल घुस जाए, हैं, इस प्रकार से नहीं। तो हमें विशेषता को बहुत दबा करके यूज करना चाहिए। जैसे बहुत पावर, हाई टेंशन भी आती है तो बिजली आती है तो 0 वाट में 0 जितना करंट जाता है, 40 वाट में 40 जितना जाता है, अगर 0 वाट में आप 100 जितना करंट डाल देंगे वो तो फ्यूज हो जाएगा। इसलिए दूसरों को भी हमें साथ रखना है। हमारे जो बड़े कहलाते हैं वो इसलिए बड़े नहीं कहलाते कि वो सबके अंदर अपनी शो कर रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। कौन कहता हम बड़े नहीं है? वो बड़े इसलिए कि वो कहते ही नहीं हम बड़े हैं। तो इस वास्ते जो ज्यादा सादे हैं जो बड़े हैं, जो ज्यादा त्यागी हैं वो बड़े हैं। यही कहते हैं यहाँ बहुत आजकल ना यज्ञ में बहुत शोशा हो गई, बहुत लग्जरी हो गई है, बहुत कंफर्ट हो गया है, तरह तरह की चीजें हो गई हैं, बहुत फैशन हो गया है, बहुत मॉडर्न हो गए हैं। अब तो वो रहे ही नहीं बाबा के बच्चे। देखो बाबा ने कहा था साधन बढ़ेंगे, ये सेवा का फल है, त्याग का फल है साधन। लेकिन उस साधनों को आपने कितना यूज करना ये तो आपके ऊपर है ना। अगर कोई ज्यादा यूज कर रहा है तो अपना भाग्य घटा रहा है। कई तो ये कहते हैं यहाँ साधन बहुत हो गए हैं, हमें यज्ञ में सहयोग देने की भी जरूरत नहीं है। इसके पीछे क्या है? हम बाबा को सहयोग दे रहे हैं या यज्ञ को दे रहे हैं ये देख करके साधन हो गए हैं। मान लो यहाँ किचन में सबको जितना मर्जी खाओ अलाउड है, आप कितना खाते हैं बोलो? यहाँ तो फ्री है ना, जितना मर्जी खा लो, दोबारा जो मर्जी ले लो, तो आप कितना खाते हैं? जितना चाहिए उतना खाते हैं ना। किसी दिन ज्यादा खा ले तो फिर चूरन भी मांगते हैं साथ में, है ना। इसलिए अगर साधन है भी तो, एक यहाँ MP आया था, उसने बहुत अच्छा भाषण किया था। उसने कहा मैंने यहाँ घूम करके देखा कि ब्रह्मा कुमारियों के पास साधन है लेकिन वो साधनों का प्रयोग अपने लिए नहीं करती है, सेवा में करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुजुर्ग था, मैंने कहा उसने ये देखा कि देखने में तो लगता है लेकिन ये किस लिए कर रही हैं? अरे जिसने इतना त्याग किया, जिसने दुनिया का सब छोड़ा, फैशन छोड़ा, घर छोड़ा, अच्छा अच्छा सब छोड़ा, लालच छोड़ा, दुनिया के सुख छोड़े, कनेक्शन छोड़े, संबंध छोड़े, उसको साधनों में अगर बिठा भी दोगे तो साधनों को अस्वीकार करेगा? वो तो कमल की तरह है, साधन बड़े पड़े रहे। कोई अगर कच्चा पक्का है, कच्चा कमल है जिसमें पानी घुस जावे, तो उसमें हमने उसको कॉपी थोड़ी करना है। इस वास्ते इसमें बड़ा वही है, आप बड़े, आपको फील होगा कि अगर ये चीज मेरे पास है, इसको मैंने त्याग किया, ये इसको मैंने सेवा में लगाया, मेरे को मिल सकती थी, तो तब आपकी ताकत बढ़ेगी, स्पिरिचुअल पावर। इस वास्ते उसको देखना चाहिए, ये नहीं कि साधनों का उपयोग हो रहा है, ये तो गिरती कला में चले गए, भगवान हमें चढ़ती कला में ले जा रहा है। आप सोचो कि जितने दुनिया के आजकल के जमाने के बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी तरह का ही रहन सहन चाहते हैं। अच्छा, पहले हमारे पास बहुत साधारण लोग आते थे, ज्ञान में अच्छे होते थे, लौकिक में साधारण होते थे, वो तो ज्ञान में प्रवीण हो गए। बाबा गरीब नवाज है, पहले ही बड़ों को बुला लेता, वो बेचारे को तो जगह ही नहीं मिलती। लेकिन अब ऐसा टाइम आ रहा है जब बड़े बड़ों ने आना है, प्रेसिडेंट्स ने आना है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने आना है, तो उनको उनके मुताबिक ही जगह मिलेगी तो आएंगे ना, उनके कम से कम इजी तो रहेंगे तो आएंगे ना। हमारी इस तरह की एकता तो नहीं है ना कि सबको धरती पर बैठा दो, मिट्टी के टाट पर बैठा दो, डोने में उसको खाना खिलाओ, तब हम आध्यात्मिक हैं। नहीं, बाबा भी कहते थे कि जो जैसा है, जिस अगर साउथ इंडियन है उसको साउथ इंडियन भोजन देना पड़ेगा, अगर कोई किसी को कोई चीज जैसे नॉर्मल लाइफ है तभी तो करेगा। क्योंकि हमें वो कहानी याद आती है कि कई कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बड़ा अच्छा त्याग है, बहुत त्याग है। क्या है त्याग है जी? कि नीचे उनके ना फोम चाहिए योग लगाने के लिए, त्याग है ना। हम लोग तो कांटों के ऊपर बैठते रहे साधु लोग, हाँ ये फोम चाहिए। अच्छा, और कान में उनको अच्छा अच्छा म्यूजिक चाहिए, महेंद्र कपूर का और पता नहीं किस किस का, तब इनका योग लगता है। नाक में इनको मैसूर की अगरबत्ती चाहिए, तब इनका योग लगता है। अच्छा, आंखों में भी इनको सीधा नहीं लगाते, कोई बैठ करके उनको दृष्टि देवे, तब इनका योग लगता है। और उसके बाद इसको मुख में टोली भी चाहिए। तो सभी इंद्रियां इनकी जो है ना, सभी वो कंफर्टेबल, नीचे भी गद्दा हो, कान में संगीत हो, नाक में सुगंध हो, आंख में दृष्टि देने वाला हो, मुख में टोली। वैसे ये त्यागी हैं, बहुत त्यागी हैं, इन जैसा त्याग किसी का नहीं। अच्छा, ये भी प्रश्न है ना। अच्छा, अब क्या किया जाए। अच्छा, ये प्रश्न हमसे भी किसी ने पूछा कि बताइए जी, ये त्याग है आपका, क्योंकि वो ऊपर का रूप देखते हैं। हमने कहा, तुमने कभी कोई अस्पताल देखा है? अस्पताल तो आजकल सबने देखा है। अच्छा, अस्पताल का कभी इंटेंसिव केयर वार्ड देखा है, जिसमें बहुत सीरियस पेशेंट को रखते हैं, जिसमें उसके रिश्तेदार को भी जाना अलाउड नहीं होगा, शीशे से देखते हैं, और जाते हैं तो जूता उतार के नंगे पांव जाना पड़ता है, देखा है। तो मैंने कहा, उसमें क्या होता है? उसमें बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है, हमारा हॉल तो अभी साउंड प्रूफ नहीं है। अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा बेड होता है, 2-3 डॉक्टर अटेंड कर रहे होते हैं, उस पेशेंट के लिए भोजन भी स्पेशल होता है, इसको ये फल खिलाएंगे, पपीता खिलाएंगे, पाइन एप्पल खिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, मुझे तो अभी तक नहीं पिलाया। खैर, तो मतलब कहने का ये है, ये सब होता है। अच्छा, उसके बाद उसका पूरा अटेंशन रखते हैं कि उसका हर चीज कंफर्टेबल हो, बेचारे को तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि उसका ऑपरेशन सख्त होने वाला है, या हुआ है या होने वाला है। तो यहां पर दुनिया सारी से हटाकर हमारा इतना बड़ा ऑपरेशन बाबा ने पता ही नहीं लगा कर दिया है, और हमें जरा मासा थोड़ा बहुत ऑपरेशन ठीक रहे, तकलीफ ना हो मरीज को, थोड़ा बहुत उसको गद्दा दे दिया, तो इसको आप कहते हो कि ये कंफर्ट हो गया। अच्छा, इस वास्ते दुनिया का सोचने का तरीका और है, और हमारा सोचने का तरीका और है। तो हमें अपने ऊपर नाज होना चाहिए, कभी भी ये नहीं, खुद ही अगर उनकी हां में हां मिलाना शुरू कर दो कि जी इनकी तो गिरती कला आ गई है, इनका तो ऐसे हो गया है, देखो क्या व्यवहार हो रहा है, बड़ा ऐसे कर रहा है, छोटा, ये सब अपने सोचने की बात है। उनको देखो जो ये सब कुछ देखते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक क्वालिटी के तो है नहीं। आजकल के अज्ञानी घरों में, रिश्तेदारों में भी कितनी खिटपिट रोज होती है। एक दिन तो बता दो जिस दिन सुबह से शाम तक उनके अंदर महाभारत ना हो है? अब हम जो हैं यहां पर तरह तरह के संस्कार वाले, पता नहीं कितने जन्मों का, किसी का कोई संस्कार, किसी का कोई, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। हर एक को बाबा ने फिर भी ऊपर से सहारा दिया हुआ है, हर एक को जिंदा रखा हुआ, पहली बातों में जिंदा रखा हुआ है, दूसरी बात तकलीफ होती है तो उसको बहुत कम कर देता है, तीसरी बात अगर कोई ऐसा खटपिट भी है उसमें भी बाबा ने साधन बनाया हुआ है कि बच्चे ठीक ठाक रहें। और आपको हर एक को फील होगा, गुप्त रीति से बाबा की मदद भी रहती है। ऐसे तो अज्ञान में भी आप चले जाएं कि कोई कन्या ससुराल में चली जाए, कितनी प्रॉब्लम आती है, आपको पता होना चाहिए, बहुत दुख है, क्योंकि वहां तो अपना कंट्रोल ही नहीं है। तो यहां तो बाबा ने अपनी छतर छाया में रखा हुआ, किसी ने कल कहा था छतर छाया में हम रहना चाहते हैं, छतर छाया तो उसकी इतनी बड़ी है, उससे बाहर आप निकल ही नहीं सकते। आप देखिए इतनी बड़ी छतर छाया है, वो हर बात हमारी जानता है। एक्चुअली तो कल किसी ने कहा था मांगने से मरना वाला, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, संकल्प भी करना मुझे ये मिल जाए ये भी अपने को नीचा करना है, या बाबा को रॉयल ढंग से कहना बाबा मुझे ये दे दे, ये भी नीचा करना है, बाबा मेरी ट्रांसफर कर दे, ये भी नीचा करना है, बाबा इसकी बुद्धि ठीक कर दे, जैसे वो कहते ना मेरी सास की बुद्धि ठीक कर दे, मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दे, तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, मेरे हेड की बुद्धि ठीक कर दे, मेरे साथी की बुद्धि ठीक कर दे, इसकी बदली करवा दे। अच्छा, तो ये भी मांगना है। वास्तव में बाबा को हम कैसे शिक्षा दे सकते हैं, क्या तूने करना है, क्या तूने, उसको पता है क्या करना है, हमें अपने आप को रखना है। तो सार ये है कि हमारे अंदर, सबके अंदर विशेषता है, हमें अपनी विशेषता को खुद ही ऐसी ऐसी चीजें आने के कारण से हम उसका पूरा यूज नहीं कर सकते, और उसको यूज करने का उपाय क्या है ये तो खैर एक आध क्लास है। उसका उपाय यही है कि हम अपने चारों सब्जेक्ट को पूरे स्टूडेंट बनके पूरे बैलेंस से करें। हम आपको बताते हैं, हम अखबार पढ़ने में आधा घंटा लगाया करते थे कि हम प्योरिटी बनाते हैं, इसमें अखबार में देखना पड़ता है। एक दिन मैंने सोचा मुझे क्या जरूरत है आधा घंटा लगाने की, 10 मिनट में भी काम चल सकता है। मैंने 10 मिनट शुरू कर दिए। धीरे धीरे मैंने कहा 10 मिनट भी क्यों, 5 मिनट में भी काम चल सकता है। अब मैं 1.5 मिनट 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाता। कोई अपने अखबार के लिए खबर हुई देखी छुट्टी, कल जो की अखबार है उसके बदले में मैंने क्या किया, मैंने अव्यक्तवाणी पढ़नी शुरू कर दी। इतनी सारी किताबें हैं हमारे पास अव्यक्तवाणियों की। अच्छा, आप कोई भी अव्यक्तवाणी नंबरवार शुरू कर दो, आप तो टीचर हो, बेस्ट टीचर हो या जो बेस्ट स्टूडेंट है। तो इसलिए कई बहन ने यह भी लिखा है कि मान लो मुरली का टाइम है, कोई पार्टी आ जाती है, किसी को अटेंड करना पड़ता है, तो मेरी मुरली मिस हो जाती है। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है। अगर आपकी मुरली सुनने में मिस हो गई तो आप पढ़ सकते हो मुरली, आप तो टीचर हो। इसलिए हम भी मुरली हमारी मिस हो जाती है क्लास में, हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ना कभी मिस नहीं किया, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कहीं हो, चाहे कहीं हो। इसलिए आप मुरली पढ़ सकते हो। और उसके एडिशनल कौन आपको रोकता है अव्यक्तवाणी पढ़ने से? ये तो हमारा वहम है। और आप एक अव्यक्तवाणी पढ़िए, आपको इतनी उसमें ताकत आएगी, आपकी जो भी होगी ना पॉइंट वगैरह, ये कोई भी प्रश्न उसमें हल हो जाएगा। किसी ने ये कहा है, हम तो यहाँ भट्टी करने आए थे, भट्टी में तो योग होना चाहिए, काफी सारा योग होना चाहिए, हमारी राय है कि आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद योग हो, और ये तो क्लासेस हो रहे हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, योग होना चाहिए, लेकिन अगर आप योग में बैठ जाओ, योग तो आप सेंटर में भी रोज 1.5 घंटा सुबह लगाते हो, वो योग की क्वालिटी क्या है? वो योग पूरी ताकत वाला क्यों नहीं लगता? और भट्टी में योग लगाने के लिए क्या और चाहिए? तो क्लैरिटी चाहिए ना, कि हमारे संकल्प प्रॉपर होंगे, उसमें से जो उलझन है निकली हुई होगी, तभी तो भट्टी योग लगेगा ना। इसलिए आपका योग भी है, लेकिन योग तो साइलेंस है, तो योग को पावरफुल बनाने के लिए आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं, ताकि सोचना तो आपने है कि हमारी बुद्धि से ये बातें सेट हो। तो हमने ये देखा है बहुत सारे प्रश्न 60% व्यवहार संबंधी हैं, ऐसा है ऐसा है, उसमें डाउट है, या तो सिस्टम पर डाउट है कि ये जो हमारे साथ जो साथी दिए हुए हैं, किसी में ऑनेस्टी नहीं है, किसी में कुछ है। अच्छा, हम ये एक तो ये करें कि जो उनमें ऐसी चीजें हम कह रहे हैं कि हमारे में तो नहीं है, मान लो हम अपने नीचे वालों को, अपने साथ वालों को ये चीजें बतानी शुरू कर दें, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, ये भी गड़बड़ है। जिसका हाजमा खराब होता है वो उल्टी करता है जगह जगह, है ना, यहां भी ना चाहते हुए उसकी उल्टी हो जाती है। इस वास्ते बाबा ने कहा हुआ कि समाने की शक्ति चाहिए। किसी ने कहा है, पता नहीं, समाने की शक्ति का अर्थ ये तो नहीं है कि हम जो है उस चीज को और बढ़ा रहे हैं, बिना ना बोलने के कारण, किसी को ना बताने से कोई बात देखी उसको समा लिया तो हम उसकी गलती को बढ़ा रहे हैं। कईयों को ये भी भय रहता है, हम इसकी गलती बताएंगे आखिर पता लगेगा इसी ने बताई है, तो उससे हमारा बोलना चलना बंद हो जाएगा, ऐसी ऐसी सब बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है, सत्य बहुत बड़ी शक्ति है, सत्य को हमें नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि हमने बताना नहीं है कोई गलती देखें, लेकिन बाबा ने कहा हुआ सत्यता को सभ्यता से यूज करना है। बताते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए इसकी मैं शिकायत कर रही हूं नहीं, या इसकी शिकायत करने से मेरी अवस्था। किसी ने यह भी लिखा है, हमारे बड़े एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें दूसरों की गलती अवगुण सुनाए, ऐसा भी लिखा है कि वो बड़े ये उम्मीद रखते हैं कि हमें आके सुनाए इसने ये किया, तब वो खुश रहते हैं, और अगर हम ना सुनाए तो खुश नहीं रहते। तो ये बहुत व्यवहारिक साधारण सी बातें हैं। वास्तव में अगर आप देखेंगे, हमें देखना है कि मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट आगे जा रहा है, योग का जा रहा है, तो ज्ञान का धारणा का जा रहा है, तो धारणा का सब्जेक्ट सत्यता तो है ही। किसी को खुश करने के लिए नहीं सुनाना, ये नहीं कि हमारे बड़े की हम फेवर विन करने के लिए उसको ऐसी बातें सुनाना शुरू कर दें, या हम देखें ये रोज जाके उसके सिर में तेल भी लगाती रहती है और सारी बातें सुना जाती जाके, उसके साथ ही बोलना बंद कर दे हैं कि भाई, और उसकी वो सुनती भी है क्योंकि वो उसमें तेल भी लगाती है, और अच्छा फिर आज क्या हुआ, तो उसको मौका लग जाता है थोड़ा झूठ भी मिक्स करके सुना देते हैं जिसके खिलाफ होते हैं। ये सब है, हमको सब मालूम है, लेकिन कहने का मतलब ये है आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए मेरी किसमें उन्नति है। ना तो सत्य को छुपाना है, ना सत्य को ईर्ष्यावश बताना है, ना असभ्यता से बताना है, ना जहां नहीं है वहां बताना है, क्योंकि सत्य मैंने किसी की गलती को ध्यान में लाना, सीधे लाओगे वो आपसे दुश्मनी करेगा, अच्छा इनडायरेक्ट उसको पता लगेगा तो भी आपसे दुश्मनी करेगा, ये सच्ची बात है, या उसको जिज्ञासु को सबको बता दोगे यहां तो ये होता है तो आपकी डिसर्विस हो जाएगी। इस वास्ते घर में भी एक कूड़े का ढोल होता है, वेस्ट पेपर, उसमें लिखा होता है यूज मी, है ना, उसको यूज करो, जहां पर प्रॉपर जगह है जहां से वो कूड़ा क्लियर किया जा सकता है वहां जाके बताओ, इमीडिएट भी नहीं बताओ, कई बार ये होता है उछल आती है अभी जाके बताया हूं, तो ताजी ताजी जो चीज होती है ना वो स्वीकार नहीं होती, स्वीकार करने के लिए प्रॉपर मौका भी चाहिए। बाबा कहता है किसी को कुछ जरा सा इशारा भी देना तो उसकी तारीफ करके दो, उसके गुण बता के उसको दो, फिर उसको फील स्नेह से दो, उसके फायदे के लिए दो, तो दादियां भी देती हैं फायदे के लिए देती हैं, रख लेती हैं, आप कहते हैं इन्होंने तो सुन लिया, कुछ कहा तो है ही नहीं उसको, वो तो आके चली भी गई, उसको कुछ कहा ही नहीं, तो उनको पता होता है हमने डायरेक्ट देना है या अपने उसके भी टीचर के थ्रू देना है, ये हमने छोड़ देना चाहिए। निमित्त बन के अपना पाठ करो, धन से सहयोग देना निमित्त बन के दो, ये नहीं कि मुझे साथ लेके जावे तो समझे इसने दिया, ये तो अभिमान बढ़ जाएगा। एक तो ये है कि विशेषता का अभिमान अपने अंदर नहीं आना चाहिए, विशेषता को किसी में ईर्ष्या पैदा करने के निमित्त नहीं बनाना चाहिए। अब इसकी दूसरी साइड भी है, जिसमें वो विशेषता नहीं है उसको निराश नहीं होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दूसरे में एक विशेषता है मेरे में वो नहीं है तो मुझे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी ईर्ष्या बढ़ती है, इसमें ये विशेषता है, ये आबू में रहते हैं इसलिए इसको हर बारी चांस मिलता है, हम तो आबू में रहते नहीं, हमें तो हर बारी चांस मिलता नहीं, तो ये अच्छे हो गए हम अच्छे नहीं हो गए। बाबा कहता है कि मैं लायक बच्चों को, सेवादारी बच्चों को, कमाऊ बच्चों को बाहर भेजता हूं, दुनिया में भी जो ज्यादा कमाऊ होते हैं वो विदेश चले जाते हैं, कोई जाके लंदन में सेटल हो जाता है, कोई अमेरिका में, अपना गांव छोड़कर अपना, क्यों कि वहां कमाई ज्यादा है, तो आप ये देख रहे हो कि जो यहां है उसको तो थोड़ी सी कमाई है, और शेर को पकड़ना शिकार करना, यहां तो बने बनाए को ले आते हैं, कोई बना के कोई ले आएगा उसको ही घास खिलाएंगे ना, वो आप तो उसको लेके आते हो, तो अपनी विशेषता को कम भी नहीं करना चाहिए और दूसरे की विशेषता को बड़ा है उसकी विशेषता, हम ये नहीं कहते कि वो ऐसे ही है, लेकिन अपने को उससे कंपेयर करके अपने को डाउन करना ये भी कोई बात नहीं है। अपने सम्मान में रहने का मतलब यह कि हमें हम विशेष हैं, हम विशेषता को यूज करेंगे तभी हम विशेष हैं, अगर हमारी विशेषता यूज में नहीं आ रही, जिसको बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करो अर्थात शक्ति को यूज करो, तो हमारे को चेक करना चाहिए, या तो इसमें ईर्ष्या है या जिद है या निराशा है या कुछ मैंपन है, इसलिए विशेषता का ना होना आपको निराश नहीं करना चाहिए। मान लो मैं बहुत गरीब हूं, जैसे किसी ने यह भी पूछा है कि बाबा ने कहा है गरीब का एक और अमीर का हजार बराबर है, कैसे, मान लो मैं गरीब हूं, कोई अमीर है, अच्छा अमीर ने एक हजार दिया, मेरे सामने दिया, एक हजार की जरूरत थी, मेरे पास तो एक है, उसको एक हजार देने का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने एक हजार दिया, क्योंकि उसका जितना है उसके हिसाब से गिना जाएगा, क्या उसने एक हजार पेट काट के दिया या उसका एक हजार एक्स्ट्रा था जब करके दे दिया, या कई एक हजार दे सकता है उसके लिए तो इजी है उसने दे दिया, और मैंने अपना, मैं आठा नहीं दे सकता था, मैंने अपना बचत बुचत करके दो दिन शेव नहीं कराई, आठा ने बचाए वो मैंने दिए, तो मेरी वैल्यू ज्यादा है ना, लेकिन मुझे उससे एक हजार से कंपेयर नहीं करना चाहिए, मुझे अंदर से खुशी आएगी कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, इसलिए त्याग वो है, चैरिटी वो है जो अपने में से काट कर दी जाए। ब्रह्मा बाबा ने अपने आराम का टाइम काटा, अपनी चैन काटा, सारा दिन फिक्र किया, अब दादी को देखो, उसका भी एक दिन और अपना भी एक दिन, उसको कितने काम करने पड़ते हैं, और यहां तो दो चार काम करके कहते हैं, हम तो थक गए, बहुत हो गया, अब तो हम थक गए, मैं भी वैसे थक गया हूं, अब पूरा करते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि थकना शब्द ब्राह्मणों को होना चाहिए, या अथक हैं हम थक वाले सेवाधारी हैं, या हमारा टाइटल क्या है, अथक सेवाधारी। इसलिए अगर सेवा समझ के करेंगे तो थकेंगे नहीं। थकना किससे होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस से। कौन थक गया, मेरा दिमाग थक गया, ये तो बॉडी की चीज है। मेरी टांगे थक गई, ये तो बॉडी की चीज है। अभी आपको कह दें आज जो है ना, भोजन नहीं करना, दो घंटे अखंड योग करना है, अभी टांगे थक जाएंगी। दो घंटे तो ऑलरेडी हो गए, दो घंटे और। अभी कह दें यहाँ बहुत बड़ी पार्टी आ रही, नाटक पार्टी है, लता मंगेशकर आ रही, फलाना, चलो आज भोजन नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे, भोजन तो रोज ही करते हैं, तो क्या हुआ, थिंकिंग ही है ना। इस वास्ते ये हमेशा सोचना चाहिए कि थकावट मैंने उस चीज की वैल्यू को कम कर रहे हैं हम, या हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए। रात को हम मान लो 12 बजे सोए, सुबह आदत के मुताबिक 4 बजे उठ जाएंगे, फिर कहेंगे 12 बजे सोया था ना मैं, इसलिए मैं थका हुआ हूं, वैसे नहीं हूं, इसलिए। इसलिए बाबा कहता है कि इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो अच्छा। तो अब हमारी आदरणीय दादी जी पधारने वाली हैं।